और तभी आस्था दौड़ते भागते किसी से बुरी तरह टकरा गई थी। अब आगे वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना पति अरमान सिंघानिया था। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था ने जोरों से उसे गले से लगा लिया था और रोने लगी। वो घबराई हुई थी और डरते हुए बोली, अरमान जी, वो ये लोग, उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वही लोग जो आस्था के पीछे भाग रहे थे, अचानक अपने सामने अरमान सिंघानिया, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, मारिया, टाइगर को देखकर रुक गए थे। और अरमान सिंघानिया को सामने देखने के बाद उनकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो चुकी थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया को भले ही कम लोगों ने देखा था लेकिन उसके बारे में सब लोग अच्छी तरह जानते थे। और अब सब लोग अपना डर के मारे थूक निकलने लगे। अरमान ने एक नज़र आस्था को देखा। आस्था के गले और चेहरे पर एक लड़के ने जब आस्था को जमीन पर पटका था, तब उसने खींच कर एक चांटा उसके मुंह पर मार दिया था और साथ ही साथ उसके गले के पास से उसे अच्छे से नोच दिया था, जिसकी वजह से आस्था की खूबसूरत सी स्किन पर गहरा निशान बन गया था। उसके होठों से खून आ रहा था। अब आस्था को इस तरह से देखने के बाद अरमान का खून बेहद तेजी से उबलने लगा था और वो प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए गुस्से से बौखलाते हुए उन सारे लड़कों को देख रहा था। तब तक आकाश, सुमित, मारिया, टाइगर सबने आकर उन लड़कों को चारों तरफ से घेर लिया था। उन लड़कों के बचकर जाने की कोई जगह नहीं थी। अरमान ने एक हाथ से आस्था को होल्ड किया हुआ था। अगले पल मारिया थोड़ा सा आगे आई और मारिया ने उस लड़के, जिस लड़के ने आस्था की साड़ी को पकड़ा हुआ था, के हाथ से उसे लेकर आस्था को अच्छे से कवर कर दिया था। उसके बाद मारिया ने चिंता जाहिर करते हुए अरमान की ओर देखा और जल्दी ही आस्था को अपने साथ लेकर जाने लगी थी। तभी जैसे जैसे मारिया आगे जा रही थी, वैसे वैसे आस्था बहुत डर रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से ये बात याद थी। अरमान ने उसे साफ साफ इस बात के बारे में मना किया था कि वो भूलकर भी कभी भी उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, लेकिन फिलहाल तो आस्था ने अब अपनी बचकानी हरकत कर दी थी। और जल्दी ही आस्था के कानों में किसी की बड़ी बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हुई थी। आस्था खुद को रोक नहीं पाई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां का नज़ारा देखकर आस्था की जान हलक में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान उन सभी लड़कों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। अरमान के हाथ में एकदम छोटा सा लेकिन काफ़ी पहना, काफ़ी तेज धार वाला नाइफ था और उसे लेकर वो कभी किसी लड़के की आंखों में मार रहा था तो किसी की जांघ में घुसा रहा था तो किसी के पेट में, किसी के हाथों पर। कभी कभी वो बुरी तरह से उन लड़कों के बदन पर छोटे छोटे घाव दे रहा था। इतना ही नहीं, एक लड़के के बालों को उसने इतनी तेजी से पकड़ा था कि लड़के की खाल तक उन बालों में निकल कर आ गई थी। अरमान ने बड़ी ही बुरी तरह से उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी इस तरह से कट दिए थे कि उन लड़कों की बड़ी ही दर्दनाक चीख वहां गूंज रही थी। अरमान न केवल उन्हें मार रहा था बल्कि उन्हें ऐसी सजा दे रहा था मानो कि उसकी बीवी पर हाथ उठाने वालों का वो यही हाल इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेगा। अरमान एकदम डेविल किंग के अवतार में था। उसने अपने आदमियों को साफ साफ मना कर दिया था कि इन लोगों की जान कोई नहीं लेगा। इन लोगों की जान लेने का हक अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया का है। और अरमान ने जल्दी बड़ी बुरी तरह से उन लोगों को एक खौफनाक मौत दे दी थी और आस्था ने ये सारी चीज अपनी आंखों के सामने देखी थी। अरमान का खूबसूरत सा हैंडसम सा चेहरा एकदम खून से सना हो चुका था। उसके पूरे जिस्म पर, उसकी गर्दन पर, उसके चेहरे पर खून ही खून नजर आ रहा था, जो कि उन सब लड़कों का था। और अरमान उस खून वाले रूप में उन सब की जान लेने के बाद अब आस्था की तरफ बढ़ा। कहीं ना कहीं ध्रुव आहान को आस्था के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अरमान का डेविल किंग वाला रूप कभी भी आस्था के सामने आए, लेकिन आज तो सारी चीज आस्था के सामने थी। मारिया ने कोशिश की थी कि वो आस्था को वक्त रहते वहां से ले जाए, लेकिन वो नाकामयाब रही। उससे पहले ही अरमान उन सब पर टूट पड़ा था और आस्था ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब जैसे जैसे अरमान अब आस्था की तरफ बढ़ रहा था, आस्था का गला सूखने लगा था। अरमान, जिससे वो इतनी मोहब्बत किया करती थी, अब उसका इतना खतरनाक रूप देखने के बाद उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उसकी ओर आंखें उठाकर देख सके। उसे अरमान से इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डर के मारे उसकी टांगें पूरी तरह से कांप रही थीं। लेकिन अरमान अपने इस खून वाले चेहरे के साथ आस्था के ठीक सामने खड़ा हुआ था। अभी भी अरमान की आंखें आस्था के बदन पर लगी खरोचों के निशान पर थीं। उसका दिल कर रहा था जिन लोगों की उसने बड़ी बेरहमी से अभी जान ली है, उन्हें एक बार फिर जिंदा करे और एक बार फिर से उनकी जान ले, क्योंकि अभी तक अरमान का मन नहीं भरा था। और अरमान घूर कर आस्था को देख रहा था, लेकिन आस्था ज्यादा देर अरमान का इतना खतरनाक रूप नहीं देख पाती और वो उस वक्त बेहोश हो गई थी। अरमान ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था और सीधा लेकर बाहर निकलने लगा। और उस जंगल से बाहर आकर वो एक अलग कार में बैठ गया था, क्योंकि जिस कार में रौनक, साथ ही साथ राधिका और रश्मि थी, वो सब दूसरी कार पहले ही मेंशन में चली गई थी और उन्होंने वहां जाकर बता दिया कि आस्था इस तरह से मिसिंग है। मेंशन में नाली माँ साथ ही साथ दादाजी पूरी तरह से परेशान हो उठे थे। कहीं ना कहीं दादाजी को भी अब अपनी नादानी पर गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से भला बच्चों की बातों में आकर वो उन्हें बाहर जाने की परमिशन कैसे दे सकते हैं। वहीं प्रियंका के तो मन में लड्डू फूटने लगे थे। उसे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि काश आस्था बिल्कुल भी ना मिले और उसका पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। तो वो बस इसी खुशी के साथ आराम से टांग पर टांग रखकर हॉल में बैठी हुई थी। वहीं रश्मि, राधिका, रौनक वो परेशानी से इधर उधर टहलने लगी थी, क्योंकि उन्हें आस्था के बेसब्री से आने का इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अब खुद पर ही पछतावा हो रहा था कि उन्हें इस तरह से आस्था को बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन तभी कितनी सारी गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आने लगी थी। जंगल में जिन आदमियों, जिन लड़कों की जान अरमान ने ली थी, उन्हें जल्दी ही टाइगर और बाकी सब ने मिलकर ठिकाने लगा दिया था और उनकी लाश को उनके घर भिजवा दिया गया था और सबके सब वापस से सिंघानिया मेंशन लौट आए थे। अरमान उस खून भरे हालत में आस्था को गोद में उठाए हुए मेंशन के अंदर आ रहा था। उस वक्त रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स मेंशन में मौजूद थे, वे सभी अरमान का इस तरह का खौफनाक रूप देखने के बाद थरथर कांप रहे थे। जल्द ही अरमान बेहोश आस्था को अपने साथ में सिंघानिया मेंशन के अंदर ले आया। वहीं नानी माँ, रश्मि, राधिका, साथ ही साथ रौनक ने जैसे ही अरमान का ये रूप देखा, उन्होंने एक जोरों से चीख मार दी थी, क्योंकि अरमान लगे इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी नानी माँ की आंखों में तेजी से काफी सारे आंसू आ गए थे, क्योंकि वो अपनी आस्था की ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। और अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अरमान का कितना बड़ा तगड़ा सा एक्सीडेंट हुआ हो। जल्दी अरमान ने आस्था को हॉल में पड़े हुए सोफे पर लिटा दिया था। वहीं नानी माँ तुरंत आस्था का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई थी और बुरी तरह से रोने लगी थी। तब तक रश्मि, आस्था, साथ ही साथ रौनक भी उसके पास आकर बैठ गई थी, और कोई आस्था का हाथ सहला रहा था तो कोई उसके पैरों को सहला रहा था। वो तभी दादाजी डरते हुए अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए थे और बोलते हैं, बेटा।
दादाजी ने इतना ही बोला, लेकिन अरमान ने आंख उगलती हुई नजर दादाजी के ऊपर डाली। तभी आकाश, सुमित ने आकर अरमान के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने के लिए कहने लगे, और साथ ही साथ उसे इस बात का एहसास करा रहे थे कि इस वक्त उसके जिस्म पर कितना सारा ब्लड लगा हुआ है। तब अरमान ने एक नज़र मारिया की ओर देखकर फटाफट से सीधा अपने कमरे में जाने लगा था, और अरमान ने जल्दी ही अरमान की नज़रों को भांपकर डॉक्टर को बुला लिया था, और डॉक्टर ने हॉल में ही आस्था का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। अरमान जल्दी नहाकर वापस से हॉल में आकर बैठ गया था। वो सीधा सीधा आस्था को अपने कमरे में भी लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि उस वक्त नानी माँ की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो आस्था के साथ रहना चाहती थी। वहीं प्रियंका ने जब से अरमान का खून से लथपथ चेहरा देखा, उसकी हालत बेहद अजीब हो चुकी थी और वो सीधा अपने कमरे में चली गई थी, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी। जिस अरमान हैंडसम से चेहरे को वो ढेर सारा प्यार करना चाहती थी, उसके गालों को चूमना चाहती थी, उसके होठों को चूमना चाहती थी, उसके शरीर पर इतना सारा खून देखने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था और उसे उल्टी होना शुरू हो गई थी। वेल, तभी अरमान सीधा आस्था के पास आया। आस्था अभी थी बेहोश थी। डॉक्टर ने अरमान को बता दिया कि वो ठीक है, लेकिन डर की वजह से बेहोश हो गई है। तभी अचानक अरमान ने नानी माँ से कहा कि आप आस्था के पास से हटकर अलग बैठ जाइए। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, नानी माँ हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी थी और मन मन में सोचने लगी थी कि क्या मैं ऐसी हालत में भी अपनी बेटी के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। तभी दादाजी ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा और मानो कि वो उसे कहना चाह रहे हों कि वो आस्था की नानी माँ है, उन्हें उसके साथ बैठने दो। लेकिन अरमान ने तुरंत सभी को आस्था के पास से हटाने के लिए कह दिया था, और सबके पास कोई और रास्ता नहीं था। सभी एक तरफ अलग सर झुकाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि उनकी गलती थी, उन्हें इस तरह से मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अबीर सिंह राठौर अंडरवर्ल्ड के किंग की चेयर पर एक राजाओं की तरह बैठा हुआ था और साथ ही साथ आस्था की खूबसूरत सी तस्वीर को देख रहा था, क्योंकि उसने अमरीश की एक बात गांठ बांध ली थी कि मोहब्बत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। इसीलिए उसने आस्था को पाने के लिए इस तरह का रास्ता अपनाया था। उसने सोच लिया था कि अगर अरमान की ताकत ही खत्म कर दी जाए, उसके बाद वो आसानी से आस्था को अपना बना लेगा। इसके लिए उसने अरमान के सबसे बड़े दुश्मन अमरीश के साथ हाथ मिला लिया था, और अमरीश तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहता था। इसके लिए उसने अबीर सिंह राठौर के कंधे पर रखकर गोली चलाई थी, और सीधा सीधा अबीर सिंह राठौर के संरक्षण में ही उसने वीर रायचंद को रखवा दिया था। वही वीर अबीर सिंह राठौर के साथ रहने लगा था। साथ साथ वीर अंदर ही अंदर किलकिला रहा था, क्योंकि जब से उसे ये पता चला था कि अरमान सिंघानिया की बीवी भी अबीर सिंह राठौर का ऑब्सेशन है, तो वो बहुत ही ज्यादा किलकिला रहा था, क्योंकि उसका इरादा तो था कि वो अरमान को हराएगा और उसकी बीवी के साथ कुछ रातें गुजारेगा, क्योंकि वीर को अलग अलग तरह की नई नई लड़कियों का बेहद शौक था। वो जब से उसने आस्था को देखा था तो डेस्परेटली वो आस्था को अपना बनाना चाहता था, लेकिन अब अमरीश ने उसे साफ साफ इस बात के बारे में समझा दिया ताकि वो भूल कर भी कभी भी अबीर के सामने आस्था का नाम नहीं लेगा, और जब तक कि उसके बाहर जाने के सारे इंतजाम नहीं हो जाते तब तक वो अबीर सिंह राठौर की हर बात मानेगा और उसके साथ ही रहेगा। वहीं वसुंधरा रायचंद, जो कि हॉस्पिटल से घर आ गई थी, उसे इस बात के बारे में पता चल चुका था कि उसका पति अमरीश रायचंद लौट आया है, तो वो काफी खुश थी। लेकिन अमरीश ने उसे सीधे मुंह बात नहीं की थी, क्योंकि अमरीश का तो उल्लू सीधा हो चुका था। हालांकि वसुंधरा ने अपनी पावर पोजीशन काफी ज्यादा पावरफुल बनाई थी, लेकिन अमरीश रायचंद के आगे वो ज्यादा खास अभी भी नहीं थी। अमरीश सीधा वसुंधरा के सामने आकर खड़ा हो गया था और उस पर बरसते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेरा बेटा इस तरह से जिंदा होकर आ जाएगा और इतने सालों बाद आकर मेरे खून को टारगेट करेगा, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो वसुंधरा, अगर मेरे वीर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, समझी तुम? ये बोलकर अमरीश जल्दी ही अपने कमरे में जाने लगा था और कमरे में जाने से पहले उसने एक लड़की की तरफ देखा। जो लड़की अमरीश के साथ विदेश से आई थी और सीधा वो लड़की अमरीश के साथ कमरे में जाने लगी। वसुंधरा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था क्योंकि अमरीश की और उस लड़की की मनमोहक आवाजें बाहर तक आ रही थी। वसुंधरा गुस्से से आग बबूला हो उठी थी और सीधा अपने कमरे में चली गई थी। एक तो वसुंधरा खुद अब बेचैनी का शिकार हो गई थी क्योंकि जब से उसे ये पता चला था कि उसका बेटा जिंदा है, साथ ही साथ इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास, तो रह रहकर उसे अब काफी ज्यादा लालच जन्म ले रहा था।